नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण के लिए मतदान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य में सुबह 9 बजे तक लगभग 19% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। खरसियांग से हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया की एक रिपोर्ट।
दार्जिलिंग जिले के 24 नंबर कर्शियंग विधानसभा क्षेत्रों के सभी 296 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। इस बार SIR के कारण मतदान 80% से अधिक रहने की उम्मीद है। लगभग 2,30,000 वैध मतदाता इस सीट से चुनाव लड़ रहे 7 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। मुख्य मुकाबला BJP के सोनम लामा और क्षेत्रीय पार्टी BJPM के अमर लामा के बीच है।
तमिलनाडु के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक राज्य में करीब 18% मतदान की खबर है। राज्य में 5,73,00,000 से अधिक मतदाता 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य भर में 75,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के परिणाम एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं से उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में बारामती और अहिल्यानगर जिले के राहुरी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राहुरी विधायक शिवाजी कर्देले के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। उधर गुजरात के आणंद जिले में उमरेठ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दमदम, हाबरा और सप्तग्राम में रैलियों को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमदंगा और हरिपाल में प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। श्री खड़गे ने तमिलनाडु के चेन्नई में संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी। आयोग ने श्री खड़गे को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्यों को समाहित करने की निरंतर प्रक्रिया भी है। श्री बिरला ने कहा कि आज के बदलते युग में युवाओं के लिए ये आवश्यक है कि वे नवाचार, मूल सोच और प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह के दौरान कही। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के ड्रमनगंज इलाके में कल रात एक सड़क हादसे में 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी मृतकों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जा सकता। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर खलीफाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघनों में ईरान के बंदरगाहों की अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी शामिल है। IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।